नमस्कार दोस्तों, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं नरगिस खामोश और आज हमारे स्टूडियो में एक बेहद खूबसूरत, दिलचस्प और आज की आधुनिक जीवन शैली में उभरती हुई एक नई किस्म की समस्या को सबके साथ डिस्कस करने के लिए हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कुछ अपने थॉट्स। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मैडम श्रीमती किरण चावला जी, श्रीमती नीलांजना जी जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, और डॉक्टर लीना सिन्हा। आप सभी का रेडियो मानव रचना के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद
धन्यवाद
धन्यवाद।
साथियों, मैं हूं नरगिस खामोश और जैसा कि आप जानते हैं, रेडियो मानव रचना की एक कोशिश रहती है कि हमेशा जिंदगी के हमराह कदम ब कदम आपके साथ चले। आपके मन में बहुत से अबोध सवाल, आपकी कल्पना के बहुत से बुलंद ख्यालात, आपके ख्यालों की परवाज, आपके सपनों की उड़ान, आपकी करियर की काउंसलिंग, आपकी मनोवैज्ञानिक समस्याएं, हेल्थ प्रॉब्लम्स, जिंदगी की रोज़मर्रा की उलझनों से जुड़े हुए बहुत से सवाल, इन सब के वो एक दायरे में लेकर चलने की कभी किसी जाविये से, कभी किसी दृष्टिकोण से, कभी इस कोने से, कभी इस खिड़की से, कभी उस झरोखे से कोशिश रहती है कि जिंदगी की तस्वीर धीरे धीरे करके साफ सुथरी सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई आपके मन को, आपके मनोबल को बढ़ाती हुई और उसके साथ साथ एक पुरसुकून एहसास करवाती हुई हमारे हर कार्यक्रम की यही एक रूपरेखा होती है, यही एक उद्देश्य होता है। और आपके साथ जुड़कर आपको एक सुकून शांति मिले और हमें अपने कार्यक्रम से आपके साथ और करीब होने का, और करीब जुड़ने का और साझा करने का अपने ख्यालात को मौका मिले, इसी कोशिश के साथ आज हम एक नया विचार बिंदु लेकर आपके सामने आए हैं। मेरी इस कोशिश में शामिल है मेरे साथ रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर नीलांजना, डॉक्टर लीना सिन्हा, श्रीमती किरण चावला और मैं यानी कि आपकी दोस्त नरगिस खामोश। तो दोस्तों, हम शुरू करें इस विषय से जुड़ी हुई एक परिचर्चा को। मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे जैसे ज़माने में तरक्की हुई है, हमारी सभ्यता का विकास हुआ है और जीवन शैली बदली है, नारी के लिए शिक्षा के, उन्नति के, आत्मनिर्भर होने के बहुत से नए सोपान सामने आए हैं, बहुत से नए झरोखे खुले हैं, बहुत से नए अवसर उसके सामने आए हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि आप कोई भी समाचार पत्र उठाइए या जब वार्षिक परिणाम आते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, स्कूलों के, उसको देखिए तो औरत ने हर जगह मजबूती से अपने कदम जमाए हैं। लेकिन जितना जितना वो मजबूत हो रही है, कुछ नए किस्म की समस्याएं सामने आ रही हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि औरत जब अपने सेफ जोन, घर गृहस्थी के दायरे से निकलकर समाज में पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चलती है तो कभी कभी कुछ लोगों को नागवार गुजरता है, नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है उन्हें। मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर नीलांजना को कि वो बताएं कि आज के समाज में जहाँ औरत के लिए उन्नति के बहुत से रास्ते खुल गए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अनेक अवसर उसके सामने हैं, उस स्थिति में जो है, इस नए परिदृश्य में औरत की क्या स्थिति है समाज में?
देखिए, औरत की स्थिति समाज में वही है जो पहले थी। एक पुरुष वर्चस्व का समाज है और यही विरासत हमने अपने बड़ों से पाई है। आज महिलाएं भी उसी पुरुष वर्चस्व के द्वारा प्रोग्राम्ड हैं। लोग कहते हैं ना, औरत औरत की दुश्मन है, ऐसा नहीं है। औरत क्यों है औरत की दुश्मन? क्योंकि औरत ने भी पुरुष वर्चस्व का ही तो
रूप देखा है
और उसी में बीच में पली बड़ी है। जब एक ननद होती है तो वो भाभी के प्रति क्यों एक रूखा व्यवहार रखती है? क्योंकि वो जानती है कि मैं तो एक इसके पति की बहन हूँ, ये एक मेरे अंदर एक पावर है। हमारे यहाँ क्यों कहते हैं लड़कों की माँ, इसके तो एक बेटा है। क्यों? क्योंकि बेटे की माँ होना आपको एक पावर देता है, पुरुष वर्चस्व के समाज में आपकी एक हैसियत बनाता है। तो जब हम इस हैसियत में, यही हैसियत हमें सामाजिक, यही धार्मिक, यही राजनीतिक हैसियत को हम देख रहे हैं और जी रहे हैं, तो जब एक ऐसा समाज है तो अभी तक ये सुनने में तो कड़वा लगता है, लेकिन महिलाएं अभी भी सेकेंड क्लास सिटीजन हैं। और आप घरों में देखिए, आप परिवार में देखिए, क्या हमारा हिंदुस्तानी पुरुष इतना तो डेमोक्रेटिक हो गया है कि वो बेटी को बेटे के बराबर समझता है पर अपनी पत्नी को अपने बराबर नहीं समझता?
ठीक,
ये एक बहुत बेसिक बात है। और उसके साथ दूसरी जुड़ी हुई बात ये है कि वे महिलाएं जो पढ़ लिख कर ब्रेड अर्नर भी बन गई और अपने परिवार की इनकम में भी मदद कर रही हैं, उनके आगे तो दोहरा चैलेंज आ जाता है, क्योंकि उनके पति को कहीं ना कहीं इस बात का भी एहसास रहता है ये कमाती है तो जरूर इसमें कुछ घमंड होगा।
तो अगर से ही वो पहले,
तो वो पहले से ही अपना अहंकार थोड़ा बढ़ा लेता है, जो शायद उस महिला का पति उस अहंकार को नहीं बढ़ाता है जो शायद कमा नहीं रही है। तो मैंने अक्सर ऐसा समाज में देखा है कि जो महिलाएं कमा नहीं रही हैं उनका फैमिली डिसीजन मेकिंग में ज्यादा हिस्सा होता है, बल्कि जो कमा रही हैं उनका कभी कभी अपने ही कमाए हुए पैसों पर हक नहीं रहता। उनके अपने कमाए हुए पैसे खर्च कैसे होंगे ये उनकी पति या उनकी सास तय करेंगी। हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं।
काफी हद तक डॉक्टर साहब ने ठीक बात कही।
चलिए,
जो औरत कमा रही है मतलब अगर
उसे अपने पति के अहंकार को और ज्यादा संभालना है,
किसी चीज अगर वो किसी मामले में मुंह भी खोलना चाहे या कुछ कहे
तो तुम्हें तो
उस बात को उसको प्रताड़ित कर दिया जाएगा कि तुम तो घमंड के मारे ये कह रही हो, तुम्हें तो अपने कमाई का बहुत रुआब है। तो वो बेचारी अपने पति के अहंकार को पालने में ही, उसका पोषण करने में ही अपने एक एक्स्ट्रा एनर्जी लगाती रहती है ताकि उसकी गृहस्थी में तालमेल बना रहे। तो ये बिल्कुल सही फरमाया। तो दोस्तों, डॉक्टर निरंजना की बात में मुझे बहुत एक सच्चाई नज़र आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ औरत जिस माहौल में पलती बढ़ती है, संस्कार रूप में उसे ऐसा ही माहौल मिलता है, बेटा होने से उसके चेहरे पर गर्व आ जाता है, जैसे कि कुछ उसे रुआब कुछ पावर मिल गई है, और जिसके बेटा नहीं होता उसको थोड़ा सा इस नज़रिए से भी देखा जाता है जैसे उसने कुछ एक उपलब्धि पानी थी जो वो नहीं पा सकी, तो वो निकृष्ट है बाकियों से। तो ये एक एहसास उसके अंदर भी रहता है कमतरी का, और दूसरे लोगों की निगाहों में भी उसके लिए रहता है। तो दोस्तों, एक बहुत सच्ची बात से आज की परिचर्चा शुरू हुई है। आप जानते हैं हमारा समाज पुरुष प्रधान है, और हमारे समाज की कोशिश हमेशा से महिलाओं को कुछ पाबंदियों की जंजीर में बांध कर रखने की है। पुरुष ये तो चाहता है कि एक औरत माँ की तरह उसका लालन पालन करे, बहन और बहू की तरह घर का सारा काम करे, बीवी के रूप में उसकी मानसिक और शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। लेकिन अगर इन सब भूमिकाओं से अलग वो अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को विकसित करने की कोशिश करती है तो वो पुरुष इसे बर्दाश्त नहीं करता, और यहीं से शुरुआत होती है रिश्तों के बीच एक कश्मकश की। यहीं से शुरुआत होती है उस चुभन की जो ताउम्र रिश्तों के बीच एक खलिश पैदा करती है और संतुष्टि की सीमा तक पहुंचने नहीं देती रिश्तों की सच्ची तस्वीर को। तो आइए हम जानते हैं, हमारे साथ बैठी हुई हैं डॉक्टर लीना सिन्हा, जो बड़े जुझारू व्यक्तित्व की हैं, बड़ी ज्ञानवान हैं, और इन समस्याओं पर उनकी बड़ी पैनी नज़र है। लीना जी, आप बताइए इस विषय में आपके क्या विचार हैं?
अभी तक जितनी भी चर्चाएं हुई हैं उसमें औरत के दर्द को महसूस किया गया, और इस विषय पर मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ पंक्तियों में कि साज हूँ मैं एक सिसकता, तार भी इसके सिसकते, छेड़ दो इसे तुम जिधर से, गूंज उठेगी से शक्ति एक रागनी।
क्या बात?
निर्मम आघात इस जगत के टीसते हैं हर तरफ से, कैसे कह दूं दर्द नहीं है, दर्द के सिवा कुछ भी नहीं है।
क्या बात?
वस्तुतः औरत इस मानसिक स्थिति में जी रही है, ये घर घर की कहानी बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर जहाँ समस्या होती है वहाँ समाधान होता है, हमें समाधान की ओर जाना पड़ेगा। यह परिचर्चा समाधान के लिए भी है।
बिल्कुल,
सिर्फ समस्याएं ही नहीं है, समस्याएं हैं तो समाधान है। तो फिर हमें यह सोचना होगा कि समाधान कैसे हो। ईगो क्लैश आज के समाज में सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वह है ईगो क्लैश।
बिल्कुल,
अगर पुरुष आगे बढ़ा हुआ है, नारी भी आगे बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर नहीं आगे बढ़ी होती तो हम चारों इस पर चर्चा नहीं कर रहे होते। तो हमें यह देखना है कि अगर नारी कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो पुरुष उसका सहयोग करे, और पुरुष अगर आगे बढ़ रहा है तो नारी उसको अच्छे तरीके से देखे। अहंकार मन में नहीं हो, अहंकार और दर्प मनुष्य को खोखला बना देता है, चाहे वह नारी है चाहे वह पुरुष है। और यही बात अगर हमारे दिलो दिमाग में, हमारे जेहन में घर कर जाए तो समझिए कि समाज की स्थिति अपने आप सुधर जाएगी।
बिल्कुल सही फरमाया।
हर तरफ नारी को ही दर्द क्यों होता है? भ्रूण हत्या देख लीजिए, बलात्कार देख लीजिए, दहेज हत्या देख लीजिए,
जन्म लेने तक
का जन्म लेने का दर्द, हर तरह का दर्द उसे ही सहना पड़ता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि ईश्वर ने प्रकृति बनाई, प्रकृति दोनों की भिन्न भिन्न है, स्वभाव दोनों का भिन्न भिन्न है। तो जब स्वभाव भिन्न है तो हमें भिन्न स्वभाव के साथ जीना है। लेकिन हम पुरुष का स्वभाव ग्रहण कर लें और पुरुष नारी का स्वभाव ग्रहण कर लें, यह संभव नहीं है।
नहीं सर।
और इसी में वर्चस्व की लड़ाई में दोनों में लड़ाई यहाँ हो रही है। हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे का स्वभाव नहीं समझ पा रहे हैं, और अपने स्वभाव में जी नहीं पा रहे हैं। उधार की जिंदगी कभी भी सफल नहीं होती।
क्या बात, बहुत सुंदर। तो दोस्तों देखा सुना आपने, जैसा कि मैं कह रही थी, बड़ी पैनी नज़र है डॉक्टर लीना की। उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया कि औरत और पुरुष, औरत और मर्द दोनों अपनी अपनी भूमिका से बाहर निकलकर दूसरी ज़िंदगी जीने की कोशिश में लगे हुए हैं और प्रकृति के विरुद्ध चलने से कभी भी सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता। भले ही औरत ने अपने घर परिवार से निकलकर बाहर के क्षेत्र में कदम बढ़ाए हैं, मुकाम हासिल किया है, उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो गृहस्थी के दायित्वों को भी पूरा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरा वर्ग पुरुष वर्ग उतनी आसानी से अपनी भूमिका से बाहर थोड़ा सा नारी मन के साथ साझा नहीं कर पाता उतनी आसानी से। इसके लिए भी कोशिश औरत को ही करनी होगी, क्योंकि हमारे समाज में या यूं कहें कि स्वभाव से ही प्रकृति ने निर्माण की जिम्मेदारी स्त्री को सौंपी है। उसका स्वभाव कोमल है, उसका स्वभाव संवेदनशील है, उसे थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा और पुरुष को भी थोड़ा सा अपने मन को उदार करना होगा। जिस तरह अपनी बेटी के लिए उसका मन उदार है, अपनी बहन के लिए उसका मन उदार है, अपनी माँ के प्रति उसका मन उस नतमस्तक है, उसी तरह अपनी जीवन साथी की, अपनी गृहिणी की, अपनी पत्नी की, अपनी प्रियतमा के सामने भी, उसकी योग्यताओं और उसकी सलाहितों के सामने भी उसे थोड़ा सा अपने दर्द को झुकाना होगा, फिर कोई मुश्किल या परेशानी सामने नहीं आएगी। लेकिन साथियों, ये कहना जितना आसान है, सच्चाई में ये काम बेहद मुश्किल है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। रेडियो मानव रचना 107.8 पर आप हैं नरगिस खामोश के साथ, और आज स्टूडियो में पधारे हुए हमारे साथ रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर नीलांजना, डॉक्टर लीना सिन्हा और श्रीमती किरण चावला जी। और दोस्तों, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, आज के समाज में औरतों की बदलती हुई स्थितियां और बढ़ता हुआ वर्चस्व ये कहीं ना कहीं खलिश पैदा कर रहा है, कहीं ना कहीं चुवन पैदा कर रहा है, कहीं किसी रिश्ते में, कहीं किसी दोस्ती में, कहीं किसी परिवार में विघटन का कारण भी बन रहा है। तो क्यों हो रहा है ऐसा, क्या वजूहात हैं इसकी? आप देखिए ना, कुछ दिन पहले समाचार पत्र में एक खबर थी कि उत्तर प्रदेश की एक पंचायत ने 40 साल से कम उम्र की महिलाओं को मोबाइल फ़ोन से बात करने की मनाही कर दी। 40 साल से कम उम्र की महिलाओं को बाजार जाने की भी मनाही है। वजह बताई गई ताकि औरतों के साथ कुछ छेड़छाड़ ना हो सके। क्या हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जो 40 वर्ष की उम्र से पहले कम उम्र की औरत को एक ही नज़रिए से देखता है? उसको देखकर उसके मन में एक ही ख्याल आता है। क्या इसीलिए औरत को फिर से बुरके में, पर्दे में, घर की चार दीवारी में बंद हो जाना चाहिए? आज अगर इस फरमान को मान लिया जाए, कल को होगा उन्हें एजुकेशन के लिए भी ना भेजा जाए, उन्हें स्कूल ना भेजें, उन्हें कॉलेज ना भेजें। तो इस किस्म की जो एक बेकार की एक फितूर है दिमाग में, इस किस्म के फितूर क्यों आते हैं? क्यों औरतों के साथ इस किस्म की यूटीजिंग जैसी बातें होती हैं? क्यों सरेआम उनको बेइज्जत किया जाता है? इसके पीछे क्या रूट कॉजेज हैं और क्यों उनको आगे बढ़ता हुआ देखकर कहीं ना कहीं किसी दूसरे वर्ग के अंदर, पुरुष वर्ग के अंदर, स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो एक असंतोष पैदा होती है, एक असुरक्षा पैदा हो जाती है, और वो उन्हें लगता है अगर उनकी औरत उनसे आगे बढ़ गई तो रिश्ता दांव पे लग जाएगा। उस रिश्ते को बचाने के लिए पहले से ही प्रेजुडिस होकर वो अपने अहंकार के स्तर को और बढ़ा देते हैं। तो इस सब की वजह क्या है, क्या कारण है? किरण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप भी बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं और सामाजिक मुद्दों पर आपका एक अपने स्वतंत्र विचार हैं, तो कहाँ कमी रह गई है कि इतना आगे बढ़ने के बावजूद भी वो औरत जो बाहर एक बड़ी प्रतिष्ठित पद पे है, मान सम्मान मिलता है, लेकिन घर की चार दीवारी में उसे वो चीज़ नहीं मिलती? ये कमी कहाँ रह गई और इसे कैसे दूर किया जाए?
जी नरगिस जी, ये बहुत बड़ी कमी रह गई कि आज हम बहनें जो हैं, महिलाएं जो हैं, इतना काम करती हैं, घर का भी और बाहर का भी, और समाज का, अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं तो समाज के बच्चों को भी पढ़ाती हैं, और देखा जाए तो पूरे एक लड़की पढ़ती है तो 7 पीढ़ियों को पढ़ाती हैं। फिर भी कमी कहाँ रही? हमारे संस्कारों में शायद कमी रह गई। हमारे देश में एक प्रथा है नरगिस जी कि हम कन्या पूजन करते हैं।
हाँ,
जब कन्या का पूजन किया जाता है उस समय अपने पति को, अपने बेटे को और अपने भाई को हम कहते थे कि इनके लड़कियों के पांव धो, कन्या के पांव धोए जाते। तो कन्या के जब पांव धोए जाते उस समय माँ को या पिता को ये शब्द कह देना चाहिए था कि बेटा, ये जितनी भी लड़कियां हैं ये सब तेरी बहनें हैं, यही नहीं तेरे गांव की लड़कियां, तेरे शहर की लड़कियां, तेरे कॉलेज की लड़कियां, ये सब तेरी बहनें हैं और या तेरी बेटियां के समान हैं, ये तेरी साथी हैं।
तो बीज उसी वक्त डाल देते,
उसी वक्त, अगर बचपन में जब बच्चा 1 साल का है उसी समय, साल में 2 बार कन्या पूजन करते हैं, 2 बार ये लेसन अगर बच्चे को दे दिया जाए और बच्चे से ही पैर धुलवाए जाए कि चलो लड़के ही पहुंचेंगे, ऐसी प्रथा थी, लड़के ही पहुंच धोया करते थे। उस समय उनको ब्रह्मचर्य का एक जो लेसन माँ ने या पिता ने दादा दादी ने देना था वो देने में कहीं कमी रह गई। अगर आज हम दोष देते हैं टीचर्स दें, टीचर्स तो देंगे, लेकिन माँ पेरेंट्स पहले गुरु हैं, माँ पहले गुरु है, उसी समय ये संस्कार डाल दिया जाता तो आज नारी सुरक्षित होती।
बिल्कुल सही फरमाया, वो उचित समय जब बच्चे के मन में ये बीज डालना चाहिए कि वो हर औरत की इज्जत करे
जी,
उसका फर्ज है उनको मान देने का, उनके सम्मान की रक्षा करने का, तो शायद स्थितियाँ आज इतनी बदतर ना होती। तो दोस्तों देखा, किरण जी ने बड़े स्पष्ट रूप से बताया कि कहीं ना कहीं कमी हम लोगों से रह जाती है। और डॉक्टर नीलांजना, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि किरण जी जो कह रही थी उसके समकक्ष आपके क्या विचार हैं?
मैं इस संबंध में ये कहना चाह रही हूँ
जी
कि ये जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं कि लड़कियों को पूजते हैं
जी,
और एक सच्चाई ये है कि जिसे उसके अधिकार से वंचित करना हो उसे पूजनीय बना दो।
क्या बात है,
दरअसल हम क्यों पूजते हैं? इसलिए कि हम उसे उसका अधिकार नहीं देना चाहते हैं, उसे पूजा की वस्तु बना के रहना चाहते हैं। हम बराबरी का वर्ताव क्यों नहीं करते हैं
जी,
मुख्य बात यह है। और किसी दिन एक लड़की को जब हम भोजन कराने बैठा देते हैं, उससे अच्छा हम उसके साल भर की पढ़ाई का खर्चा उठा लें
जी।
मुख्य बात है सशक्तिकरण का, हम उस लड़की को कुछ दें, कुछ उसको हुनर सिखा दें। वो कहते हैं ना कि किसी आदमी को तुम एक मछली दो तो वो एक दिन की भूख मिटाएगा, उसे मछली पकड़ना सिखा दो तो जीवन भर एक काम कर सकेगा।
बहुत सुंदर।
तो इसलिए हमें कुछ ये जो हम पुरानी परंपराओं और आज के इस वक्त हम एक साथ कई सदियों में जी रहे हैं, हम 10वीं शताब्दी में भी जी रहे हैं, 20वीं शताब्दी में भी जी रहे हैं, 18वीं शताब्दी में भी जी रहे हैं।
बहुत तेजी
से बदल रहा है। तो ये सारी चीजें जो हम एक साथ जीने की कोशिश में हैं, इसलिए हम सारे कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं
जी।
एक तरफ जो कहते हैं ना कुछ, हमारा आधा तो हिंदुस्तान इंडिया है और आधा हिंदुस्तान भारत है,
भारत है।
तो वही हम सामाजिक स्तर पर भी वही स्थिति है,
इंग्लिश भी नहीं, हम इंग्लिश बोलते हैं
जी जी। तो ये सारा जो कन्फ्यूजन है। और उदाहरण के लिए एक चीज़ मैं बोलती हूँ, हम अपने पुराने लोकगीत उठा के देख लो, हमारे शास्त्रीय संगीत देख लो, क्या है उनके शब्द कि मैं रात भर सैया की प्रतीक्षा करती रही, सैया नहीं आए
जी,
ये है। या हम लोकगीत देख रहे तो अब ननद मांगे रे बबुआ की बधैया, मतलब लड़की क्या है, उसके लिए तो खैरात मिलेगी, उसे अधिकार नहीं मिलेगा, वो मांगेगी तो कुछ मिल जाएगा। तो एक व्यक्ति के तौर पर ना तो हमारे धर्म ग्रंथ, न तो हमारे लोकगीत, न हमारा लोक साहित्य, न हमारा समाज, न हमारी परंपराएं या तथाकथित हमारे संस्कार हमें कहीं भी एक इंसान की तरह नहीं रहने दे रहे हैं। एक व्यक्ति एक इंसान नहीं है, एक लड़की एक इंसान नहीं है,
वो
बेटी है, बहन है, माँ है, वो है। जैसे सुमेंदु बोमा कहती थी कि औरत पैदा नहीं होती, औरत बना दी जाती है। पैदा तो इंसान की तरह होती है, पर उसे एक औरत बनाया जाता है, ये समाज उसको औरत बना देता है और उसको उसी ढांचे में रहना सिखाया जाता है। तो अगर हम सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो हमें इंसान की तरह सोचना चाहिए कि जैसे जो अगला व्यक्ति वो भी एक इंसान है, उसकी भी कुछ ज़रूरतें हैं। मैं अक्सर गांव में, वहाँ हमारा जो कॉलेज था वो पुराने मध्यवर्गीय लोगों के बीच में एक छोटे शहर में था कॉलेज, तो वहाँ ये बात होती थी कि अगर स्त्री बदचलन है या अगर किसी का पुरुष पति बदचलन है तो ये अपने पति को पूछती नहीं होगी, तभी तो बदचलन हो गया
जी।
और अगर वो बदचलन है, अगर वो खुद बदचलन है तो फिर तो बदचलन है ही। तो आइदर वे उसी
दोनों
उसी
का में दोष है,
हर समय उसी का दोष है
जी।
सही फरमाया आपने कि हमारे समाज में स्त्री को दोयम दर्जा ही दिया गया है, और बचपन से उसे मतलब कूट पीस कर घोट पीस कर यही सबक सिखाया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसे रहना है, तुम्हें सहन करना है, तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें ऊंचा नहीं बोलना, तुम्हें खिलाफ आवाज नहीं उठानी, मतलब उसे इंसान से औरत में ढालने की उसकी कवायद शुरू बचपन से ही माँ के द्वारा, दादी के द्वारा, नानी के द्वारा शुरू हो जाती है। और फिर एक स्टेज आती है जब वो उसी में ढल कर रह जाती है, फिर उसके अंदर आवाज बुलंद करने की कुव्वत खत्म हो जाती है, और अगर कहीं गलती से बुलंद करती है तो फिर बड़ी गहरी खलिश पैदा होती है और बहुत सी ऐसी घटनाएं जन्म लेती हैं जिनको पढ़ने के बाद हमारे मतलब लोम हर्षक स्थितियां पैदा हो जाती हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर नीलांजना बहुत खूबसूरत बात कह रही हैं, बहुत सच्चाई से अपनी बात कह रही हैं। नीलांजना जी,
मैं आपको एक बात बताना चाहती थी। नरगिस जी, हमारे यहाँ 15 अगस्त पर लड़कियों ने एक गीत गाया था
जी,
और वो इतना प्यारा गीत था कि हम बैठे बैठे हम लोग रोने लगे। उसके शब्द थे, मुल्क में जब बेटियां मजबूर हैं, नाशाद हैं, दिल पे रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है।
क्या बात है, बहुत सुंदर।
अपनी माँ ही बेटियों को कम से कम परसा करे, अपने ही आंगन में वो इंसाफ को तरसा करे।
क्या बात है।
और इसी तरह उसकी पंक्तियां थी, मतलब उसको सुनते सुनते हम लोग रोने लगे
जी,
आंखों में आंसू मड़ा।
बिल्कुल। तो मुझे लगा सचमुच हम लोग कितनी बेसिक बात को नहीं समझना चाहते हैं।
ये सच्ची बात है, बहुत
आधी शिक्षा आधी मजदूरी आधा सब कुछ उसको मिल रहा है, उससे सब कुछ छीना जा रहा है।
और मैं तो बिना जिक्र किए नाम लिए कहूंगी, नहीं तो बात फिर थोड़ी वो वैसी हो जाएगी कि बहुत सी जगहों पर बहुत से फिरके बहुत से संप्रदाय ऐसे हैं जहां औरत की गवाही को भी आधी गवाही माना जाता है।
जी
बताए, पूरा इंसान गवाही दे रहा है और उसे माना आधी गवाही जा रहा है, तो सब कुछ आधा
आधा
दिया, सब कुछ आधा जा रहा है और उम्मीद उससे उससे 100 गुने की जा रही है। 100 मुख अकेली एक औरत को 100 मोर्चों पे जूझना पड़ता है, तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन औरत है कि फिर भी चलती जा रही है।
चलती क्या जा रही है, वो एक जैसे गुलाम लोग।
लीना जी, इससे पहले कि हम अपने दोस्तों को अलविदा कहें, खुदा हाफिज कहें, फिर से मिलने का वादा करें, मैं चाहूंगी आप ही दो वाक्यों में अपने मन की बात कह ही डालें।
यही कहना चाहूंगी कि पुरुषों नारी की ममता की देखो तो गहराई, अपना हृदय लुटाकर भी उसने रसधार बहाई।
क्या बात, बहुत सुंदर। और किरण जी, आपकी तरफ से?
कि हम बुलंद रहे हैं, हैं और आगे भी होंगे।
क्या बात है। तो दोस्तों, सुना आपने रेडियो मानव रचना 107.8 पर, आज आपके सामने एक बड़ी दिलचस्प, शिद्दत से भरी हुई, बड़ी जज्बों से लबरेज परिचर्चा आपके सामने आई, जिसमें समाज में औरत की बदलती हुई भूमिका और उस बदली हुई भूमिका की वजह से उत्पन्न होने वाली एक नए रिश्तों के समीकरण पर रोशनी डाली गई। इसमें डॉक्टर नीलांजना, डॉक्टर लीना सिन्हा, किरण चावला जी और मैं यानी कि नरगिस खामोश ने अपने विचार, अपने ख्याल, अपना दृष्टिकोण आपके सामने रखा। साथियों, औरत के बारे में कहा गया हमारे वेदों में, पुराणों में, वैदिक काल में ही, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। हमारी धार्मिक परंपराओं में पूजा का प्रावधान हुआ, लेकिन वस्तुस्थितियाँ बदलती गई। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, ऐसा आशीर्वाद भी दिया गया, कामना भी की गई, शुभाकांक्षा भी की गई, लेकिन सच्चाई में थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ बदल गया। तो मैं आखिर दोस्तों आपको खुदा हाफिज करते हुए अपनी कुछ पंक्तियों के साथ बात को ख़त्म करूंगी, जो अभी मुझे करते करते परिचर्चा करते करते जहन में आई हैं, कि मैं जब मांग भर सिंदूर लगाती थी, तब अपने पति को फूहड़ नजर आती थी, आज वो झेल नहीं पाते हैं मेरे कटे हुए बाल, सदी हुई चाल।
क्या बात है,
मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, इसी कश्मकश में होती जा रही हूं निढाल, आज वो झेल नहीं पाते मेरे कटे हुए बाल, सदी हुई चाल। तो औरत ने नई चुनौतियों को स्वीकार किया है, अपने कदम बढ़ाए हैं आगे नए रास्तों पर, रवानगी में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन थोड़ा सा कुछ जो विकट स्थितियां इस बदलाव की वजह से आई हैं, उन रास्तों को हमवार करने में, उस खलिश से निजात पाने में, रिश्तों के नए समीकरण भी उतने ही ममता भरे, सम्मान भरे रहें और उतने ही संतुष्टि और सुकून देने वाले हों, उसके लिए ज़रूरी है कि अपने ईगो लेवल को, अपने दर्द को, अपने अंदर के अहंकार को, उसके लेवल को कम किया जाए, तभी तो बन पाएगी ये धरती अमृत भरी वसुंधरा, और तभी तो जी पाएंगे मानवीय रिश्तों में आने वाली पीढ़ियों के वंशज सुख और सुकून भरी शांत, और तभी हो पाएगा इस धरती पर स्वर्ग जैसे सुख शांति का वातावरण कायम। इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, डॉक्टर नीलांजना, डॉक्टर लीना सिन्हा, किरण चावला जी और नरगिस खामोश। दोस्तों, एक बार हमारे साथ फील कीजिए, फील गुड,
फील लाइफ।